काफी दिनों से दीवा को आर्यांश दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में वो उसके घर जाने पर मजबूर हो गई थी। वहां जाने पर दीवा को आर्यांश के पड़ोसी से पता चला कि आर्यांश सुमन को लेकर पास ही शहर के हॉस्पिटल में गया है। दीवा तुरंत सुमन से मिलने के लिए आर्यांश के पास पहुंच चुकी थी। सुमन को माइनर हार्ट स्ट्रोक आया था। वहां जाकर सुमन की हेल्थ कंडीशन पता चलते ही दीवा ने उसका केस अपने हाथ में ले लिया था। सुमन की बॉडी सर्जरी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए दीवा ने एक हफ्ते के लिए उसे खुद के ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला किया। हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से उसे इजाज़त मिल चुकी थी। एक हफ्ते तक दीवा को इस हॉस्पिटल में रहना था, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही अपने लिए प्राइवेट रूम बुक किया और आर्यांश को ज़बरदस्ती अपना ज़रूरी सामान लाने के लिए भेज दिया था। हालांकि सामान की लिस्ट देखने के बाद आर्यांश ने साफ मना कर दिया था, लेकिन उसकी एक नहीं चली। वो पैर पटकते हुए पास ही के सुपरमार्केट में दीवा का सामान खरीद रहा था। अच्छा, तो आप अपनी पत्नी के लिए सामान लेने आए हैं सर? चिंता मत कीजिए, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का दूंगी, सेल्स गर्ल ने आर्यांश की लिस्ट को पढ़ते हुए हंसकर कहा। हाँ प्लीज, जैसा भी है जल्दी दे दीजिए, आर्यांश ने दांत भींचते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। वो उस तरफ कपड़ों का सेक्शन है, वहां मिल जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेल्स गर्ल ने आर्यांश को एक तरफ इशारा करके कहा। आर्यांश उसे यही कहना चाहता था कि वो सारा सामान खुद से दे दे, लेकिन मजबूरन उसे उस तरफ जाना पड़ा। वहां जाते ही आर्यांश ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया, क्योंकि वहां लॉन्जरीज मिल रहे थे। उस जगह पर और भी लड़कियां खड़ी थीं, जो अचानक आर्यांश के आने पर थोड़ी ऑकवर्ड भी हो गई थीं और उनमें से कुछ उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रही थीं। पक्का ही अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए कपड़े लेने के लिए आया है, यार ये कितना हैंडसम है, ऊपर से पूरा ग्रीन फ्लैग, एक लड़की ने अपने पास खड़ी लड़की से कहा। उनकी बातें सुनकर आर्यांश अपने कान बंद कर लेना चाहता था। उसने उन्हें अनदेखा किया और दीवा के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगा। वो जल्दी से जैसे उसे समझ आया वैसे काफी सारे कपड़े लेकर बाहर आ गया था। बाकी का सामान पहले ही सेल्स गर्ल ने सेलेक्ट करके कैरी बैग्स में पैक करके रखा था। दोबारा आइएगा सर, सेल्स गर्ल ने मुस्कुरा कर कहा। आर्यांश ने पे किया और फिर वहां से पास ही शॉप से दीवा के रेगुलर पहनने के कपड़े खरीदने लगा। एक वक्त ऐसा था जब दीवा आर्यांश के घर पर रहने के लिए आई थी, तब आर्यांश ने उसकी जरूरत का हर सामान पहले से ही तैयार करवा कर रखा था। उसमें कपड़ों से लेकर हर छोटी बड़ी चीज थी, लेकिन उसने ये सब खुद से नहीं खरीदा था। हाँ, दीवा के पहनने के कपड़े जरूर उसने फोटो देखकर सेलेक्ट किए थे। लगभग दो घंटे बाद आर्यांश दीवा का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। दीवा अपने कमरे में थी और उसने आर्यांश से पहले भी कहा था कि वो उसके आने के बाद ही बाहर जाएगी। कमरे में आते ही आर्यांश ने कैरी बैग्स को बेड पर पटका और दीवा को घूरते हुए कहा, आगे से मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं लाने वाला हूँ और मैं कोई तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो तुम अपना प्राइवेट सामान तक खरीदने मुझे भेज रही हो, अपना काम खुद करना सीखो। आर्यांश की चिढ़ और गुस्सा बता रहा था कि वो उसके लिए शॉपिंग करने में किस कदर परेशान हो गया था। दीवा उसे देखकर हंस पड़ी थी। तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तुम नहीं लेकर आओगे तो कौन लेकर आएगा, दीवा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वही जो तुमसे पहले हॉस्पिटल में तो बाद में रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ गया था, क्या नाम था उसका? डॉक्टर नील दीक्षित, उसी से मंगवाना और मुझे परेशान मत करना, आर्यांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। दीवा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आर्यांश को उसके नाम तक के बारे में पता था। उसने तुरंत पूछा, इसका मतलब तुमने उसके बारे में पता लगाया था? मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, उस दिन हॉस्पिटल से निकल रहा था तब उसने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दिया था और अनफॉर्चुनेटली मैं पास से गुजर रहा था इसलिए मुझे सुनाई दे गया, आर्यांश ने सामान्य लहजे में जवाब दिया। तो तुम्हें जलन नहीं हो रही? दीवा ने आंखें बड़ी करके पूछा। और मुझे जलन क्यों होगी? अच्छा लड़का है, शादी कर लेना, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया था। वो दरवाजे की तरफ पलट गया और वहां से जाने लगा। आर्यांश अपनी तरफ से यही जाहिर कर रहा था कि उसे दीवा को किसी और के साथ देखकर जलन नहीं हो रही है, पर सच इससे पूरी तरह अलग था। क्या सच में इतना बदल गया है? दीवा खुद से बड़बड़ाते हुए बोली। दीवा को अच्छे से याद था कि आर्यांश उसे लेकर कितना पजेसिव था। समय उसका नॉर्मल फ्रेंड था। आर्यांश ने उसका नाम दीवा को सपने में बड़बड़ाते हुए सुन लिया था तो उसने समय के बारे में पूरी डिटेल्स तक निकलवा ली थी। सच जानते हुए भी उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। दीवा के लिए ये हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि आर्यांश उसे किसी और लड़के के साथ देखकर नॉर्मल बिहेव कर रहा है। दीवा ने जल्दी से आर्यांश की तरफ देखा जो दरवाजे के पास पहुंच गया था। दीवा तेज और सख्त आवाज में बोली, यहीं रुको। अब क्या रह गया है? आर्यांश ने उसकी तरफ पलटकर पूछा। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, पहले भी इस वजह से दिक्कत हुई थी और अब हॉस्पिटल में भी। छोटे से काम के लिए मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कॉल करना पड़ सकता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, दीवा ने उसे रोकने के लिए बहाना बनाया और अपना मोबाइल निकाल लिया था। मुझे याद नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे आसपास रहूंगा, जब जरूरत हो बुला लेना, आर्यांश ने जवाब दिया। दीवा के लिए ये किसी मजाक से कम नहीं था। आर्यांश को खुद के ही कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं थे। दीवा आगे बढ़ी और उसके जैकेट का पॉकेट चेक करने लगी। उसके अचानक छूने पर आर्यांश जल्दी से हड़बड़ाकर पीछे हट गया था। तुम्हें पता है ना, मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं है, आर्यांश उसे घूरते हुए बोला। लेकिन तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें टच करती हूँ, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, दीवा ने बेपरवाही से जवाब दिया और आर्यांश की पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लिया था। उसने मोबाइल को आर्यांश के चेहरे के सामने किया और अनलॉक करके उसके कॉन्टैक्ट नंबर खुद के फोन में सेव कर लिए थे। उसने अपने नंबर भी आर्यांश के फोन में सेव कर दिए थे। इस बीच आर्यांश बिल्कुल चुपचाप दीवा की तरफ देख रहा था। उसे दीवा के बर्ताव से काफी अजीब लग रहा था। न जाने क्यों वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उनके बीच कभी किसी तरह की तकरार हुई ही ना हो और सब कुछ नॉर्मल हो। पहले शॉपिंग करने के लिए भेजना और फिर बाद में इस तरह खुद से ही उसके पास आकर उसकी पॉकेट से मोबाइल निकालना। मत करो ये सब, पहले भी समझाया था, मैं बार बार खुद को रोक कर नहीं रख सकता हूँ दीवा, और मैं नहीं चाहता कि गलती से भी तुम्हें हर्ट करूँ, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा और दीवा के हाथ से अपना मोबाइल छीन कर वहां से चला गया। दीवा अच्छे से जानती थी कि आर्यांश के मन में क्या चल रहा है और वो ये सब क्यों बोलकर गया है। उसके चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और क्यों रोक कर रखा है तुमने खुद को, जब मैं खुद को तैयार कर चुकी हूँ तो तुम्हें भी करना होगा आर्यांश। सही कहा था डैड ने, मैं कभी तुमसे आगे बढ़ ही नहीं पाई थी, तुमने मुझे कितनी तकलीफ दे दी, फिर भी मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, और सच कहूँ तो अगर तुम नहीं बदले होते तो फिर भी तुमसे नफरत कर सकती थी। सॉरी आर्यांश, मैं उस इंसान से नफरत नहीं कर सकती जिसने दूर रहकर भी मेरी हर छोटी चीज का ख्याल रखा है। अगर तुम पहले वाले आर्यांश होते तो मुझे खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहते, बल्कि जबरदस्ती मेरे पास आने की कोशिश करते, मुझे हर तरीके से पाना चाहते। तुम्हें खुद के इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मुझे हर्ट कर दोगे, दीवा ने हल्का मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहा।
पिछले एक हफ्ते में आर्यांश से दीवा पूरी तरह दूर थी, और ये एक हफ्ता उसका कैसे बीता था वो उसे बता तक नहीं सकती थी। बस वो इतना जानती थी कि अब वो आर्यांश के बिना और नहीं रहना चाहती है। जब दीवा ने आर्यांश को अचानक अपने सामने देखा था, तब उसके दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। जिस तरह आर्यांश उसका ध्यान रखता था और दीवा को हर्ट ना कर दे ये सोचकर उससे दूर रह रहा था, इतना काफी था दीवा के जख्मों पर मलहम के तौर पर। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे कर रहे हो, पर साफ दिख रहा है कि खुद को तकलीफ दे रहे हो। सिर्फ ये सोचकर दूर रह रहे हो कि फिर से साथ आए तो तुम वही आर्यांश दोबारा बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ना मैं होने दूंगे। प्लीज एक चांस दो हमारे रिश्ते को, दीवा ने मन ही मन कहा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने तुरंत खुद को संभाला और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी। कुछ ही देर में तैयार होकर दीवा बाहर पहुंची तो उसने देखा आर्यांश सुमन को ब्रेकफास्ट करवा चुका था और उसके लिए साइड में नाश्ता एक टेबल पर रखा हुआ था। दीवा को देखकर आर्यांश ने उसे टेबल की तरफ इशारा किया। दीवा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। सुमन माँ, आपकी कुकिंग स्किल और भी इम्प्रूव हो गई है, और मैं उस खाने का स्वाद अब तक नहीं भूल पा रही हूँ जो आपने आर्यांश के हाथों मेरे लिए भिजवाया था। दीवा ने जानबूझकर उस दिन का जिक्र किया क्योंकि वो जानती थी कि वो सुमन का नहीं आर्यांश का बनाया हुआ खाना था। इसकी हरकतें फिर से शुरू हो गईं, आर्यांश मन ही मन बड़बड़ाकर बोला और दीवा की तरफ घूर कर देखने लगा। उनके बीच ये डिस्कशन पहले ही हो चुका था और दीवा अच्छे से जानती थी कि वो खाना सुमन ने नहीं भिजवाया था, फिर भी वो जानबूझकर सुमन के सामने उसे एम्बैरस कर रही थी। जैसे ही आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा तो दीवा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई विंक की। आर्यांश ने सार्कास्टिकली सर हिला दिया था और सुमन की तरफ देखने लगा। लेकिन डॉक्टर गोयनका, मैंने आपके लिए खाना नहीं भिजवाया था, और मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से ज्यादातर खाना मिस्टर कपूर खुद ही बनाते हैं, सुमन ने बताया। हाँ, तभी मैं सोचूं टेस्ट थोड़ा डिफरेंट क्यों था, पर अच्छा था, छोटी मोटी मिस्टेक को फिर भी इग्नोर किया जा सकता है, दीवा खाते हुए बोली। उसमें कोई कमी नहीं थी, समझी तुम? खुद को क्या मिशलिन स्टार शेफ समझती हो जो परफेक्ट चीजों में भी तुम्हें जजमेंट देना है, आर्यांश तंज भरे लहजे में बोला। दीवा की बातें और आर्यांश की चिढ़ देखकर सुमन समझ गई थी कि दीवा उसे जानबूझकर परेशान कर रही है। सुमन हल्का सा मुस्कुरा दी थी। इतने वक्त बाद उन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य देखकर उसे अच्छा लग रहा था, शायद उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही थी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और दीवा अपने आर्यांश के बदलाव को देखकर उसे माफ कर ही दिया। देखते हैं अब आर्यांश कब तक अपने इस रूड और दूर रहने वाले एटीट्यूड को लेकर चलता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। आई होप आपको ये छोटा सा नया चेंज पसंद आया होगा जहां दीवा आर्यांश को टीज कर रही है।